138. नंदिनी ने उदय का हाथ पकड़कर कहा, नहीं उदय, ऐसी बात नहीं है, हम आपको ट्रस्ट करते हैं, लेकिन... इतना बोलते बोलते नंदिनी चुप हो गई। उसे चुप होते देख उदय ने कहा, अच्छा, अगर आप हम पर ट्रस्ट करती हैं तो फिर आपने हमें ये बात क्यों नहीं बताई? नंदिनी ने नीचे फर्श की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, अगर हमने आपको ये बात नहीं बताई तो फिर आपको ये बात कैसे पता चली? उदय ने नंदिनी का हाथ छोड़ते हुए कहा, आप और इप्सिता जब ये बात कर रही थी तो हमने आप दोनों की पूरी बात सुन ली थी। हम वहीं इप्सिता के रूम के बाहर खड़े थे। उस दिन हमने आपसे ये बात इसलिए नहीं पूछी क्योंकि हम आपको थोड़ा टाइम देना चाहते थे और देखना चाहते थे कि आप हमें सच बताएंगी या नहीं, लेकिन आपने हमारे डर को सही साबित कर दिया, आपने हमें कुछ भी नहीं बताया। उदय इतना बोलकर बड़ी ही मायूसी से अपना सिर हिलाकर वहां से उठकर जाने लगा। तभी नंदिनी जल्दी से उठकर खड़ी हुई और उदय का हाथ पकड़कर उसे अपने गले लगाते हुए कहा, नहीं उदय, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हम ये बात मानते हैं कि हमने आपसे इप्सिता वाली बात छुपाई, लेकिन अगर आपने ये बात सुन ली थी तो आपने ये भी सुना होगा कि इप्सिता ने हमें मना किया था ये बात बताने के लिए, और उसने हमसे प्रॉमिस लिया था कि हम आपको ये बात ना बताएं। उदय नंदिनी की तरफ देखने लगा। उसने नंदिनी को दूर करते हुए कहा, लेकिन नंदिनी, आप शायद भूल रही हैं, हम आपके हस्बैंड हैं, और आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें इतनी बड़ी बात पता होनी चाहिए? क्योंकि हमारा रिश्ता सिर्फ आपके साथ ही नहीं है बल्कि इप्सिता के साथ भी है। आप दोनों ही अगर हमसे इतनी बड़ी बात छुपाएंगी तो क्या ये सही है? आपने हमें सच में बहुत डिसअपॉइंट किया है। इतना बोलकर उदय ने नंदिनी का हाथ छोड़ दिया और वो उससे दूर जाने लगा। तभी नंदिनी ने उदय का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी उदय, हम आपसे बात नहीं छुपाना चाहते थे, लेकिन इप्सिता की प्रॉमिस की वजह से मैं आपको ये बात नहीं बता पाई, लेकिन अब मैं आपसे भी एक प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपसे कभी कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरा सॉरी एक्सेप्ट कर लीजिए। प्लीज़ इस तरह मुझसे नाराज मत रहिए। उदय ने नंदिनी की बात सुनी लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी नंदिनी ने उदय के सीने पर अपना सिर रखकर उसकी कमर में अपने दोनों हाथ डालकर उसे कसकर अपने करीब खींचते हुए कहा, प्लीज़ उदय, आई एम सॉरी, आज के बाद मैं कभी आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। प्लीज़ मुझे बस एक बार माफ़ कर दीजिए, और अगर इशू मना नहीं करती ना तो हम आपको ये बात ज़रूर बताते। लेकिन उदय नंदिनी की बात मानने को तैयार नहीं था। तभी नंदिनी ने उदय के चेहरे की तरफ देखा और उसकी दोनों गालों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, सॉरी। उदय ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। तभी नंदिनी ने अपने मन में कहा, उदय तो हमसे सच में नाराज हो गए हैं, हमें उन्हें मनाना ही होगा, क्योंकि अगर हमने आज उन्हें नहीं मनाया तो हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, और हम ऐसा नहीं चाहते। मुझे उदय बहुत अच्छे लगते हैं, शायद हमने सच में उन्हें बात ना बताकर गलती की है। वैसे भी वो हमारे हस्बैंड हैं, उन्हें हर चीज जानने का हक है। नंदिनी ये बात सोचकर अपने दोनों कान पकड़ते हुए बोली, अब तो मैंने कान भी पकड़ लिए, प्लीज अब तो मुझे माफ कर देंगी ना? उदय ने नंदिनी की तरफ देखा। तभी नंदिनी ने कहा, अच्छा, अगर आपको कान पकड़ना भी ठीक नहीं लग रहा है तो हम उठक बैठक कर लें, या आप कहें तो अपने आप को पनिशमेंट देकर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाएं। इतना बोलकर नंदिनी अपने कानों को पकड़कर उठक बैठक करते हुए बोली, आई एम सॉरी। उदय उसे ऐसा करते देख रहा था। नंदिनी ने तीन बार उठक बैठक की और अपना पैर पकड़ते हुए बोली, अब तो सच में हमारी पनिशमेंट हो गई। उदय नंदिनी को ऐसा करते देखकर उसके करीब आया, फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, ओके, हमने आपका सॉरी एक्सेप्ट कर लिया। नंदिनी ने जैसे ही ये बात सुनी उसने उदय की तरफ देखते हुए कहा, सच्ची? उदय ने हाँ में अपना सिर हिलाया। नंदिनी खुशी से उछल पड़ी। उसने उदय के गर्दन में अपना हाथ डाला और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, थैंक यू सो मच। उदय ने नंदिनी की किस को जैसे ही अपने गाल पर महसूस किया वो मुस्कुराने लगा। तभी नंदिनी ने उसके दूसरे गाल पर भी किस कर लिया। उदय उसे इस तरह किस करते देखकर मुस्कुराने लगा। नंदिनी उसके चेहरे की तरफ देखकर बोली, आपके चेहरे की ये मुस्कुराहट देखकर हमें बड़ा अच्छा लगता है। इतना बोलकर वो आगे बढ़ी और उसने उदय के होठों पर जल्दी से एक हल्की सी किस कर ली। उदय ने जैसे ही उसे अपने होठों पर किस करते देखा उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसने नंदिनी की कमर पर अपना हाथ कस दिया और खुद उसके करीब जाकर उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगा। नंदिनी उदय के इस तरह किस करने पर मुस्कुराई और काफी ज्यादा ब्लश करने लगी, जिससे उसके गाल पूरे पिंक हो गए। उदय ने नंदिनी को किस करते करते ही अपनी गोद में उठा लिया और उसे बेड पर ले आया। जैसे ही नंदिनी ने उदय की तरफ देखा उदय अभी भी उसे किस करता ही जा रहा था। नंदिनी को सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई और साथ ही उसे थोड़ी शर्म भी आ रही थी, तो उसने उदय को रोकते हुए कहा, बस करिए, क्या कर रहे हैं आप? नंदिनी ने जब उदय को रोका तो उदय तुरंत ही एक जेंटलमैन की तरह बिल्कुल रुक गया। उसने उसके बालों को समेटकर उसके माथे को चूमा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। नंदिनी ने भी अपना सिर उसके सीने पर रखा और वो दोनों एक दूसरे को हग करके सो गए। अगले दिन सुबह उदय और नंदिनी आज बहुत ही प्यारे कपल की तरह एक दूसरे की तरफ देखते हुए ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी उदय ने इप्सिता की चेयर की तरफ देखते हुए कहा, नंदिनी इप्सिता कहाँ है? नंदिनी ने कहा, अरे हाँ, हम तो आपको बताना ही भूल गए थे, आज उसका कोई शूट नहीं है, इसलिए उसने आज छुट्टी ली है और अभी तक सो रही है। उदय उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोला और चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगा। थोड़ी ही देर में नंदिनी और उदय साथ में ही घर से बाहर निकल गए। वहीं इप्सिता अभी भी अपने बेडरूम में थी और बेड पर ही लेटी हुई थी। शायद अभी उसकी आंख भी नहीं खुली थी, क्योंकि कल रात में उसने काफी देर तक अभिमन्यु से फोन कॉल पर बात की थी और इसी वजह से वो सुबह जल्दी उठ भी नहीं पाई थी। इप्सिता काफी ज्यादा नींद में थी, उसने अपनी आंख भी नहीं खोली होती अगर उसका फोन रिंग नहीं हुआ होता। जैसे ही इप्सिता को अपने फोन की कॉलर ट्यून सुनाई दी, उसने आंख खोलते हुए अपना फोन उठाया और देखा कि उसमें अभिमन्यु का नंबर फ्लैश हो रहा था। इप्सिता की आंखें झट से खुल गईं और वो बेड पर उठकर बैठी। उसने अपने बालों को फ्लिप किया और मोबाइल फोन की तरफ देखते हुए बोली, अभिमन्यु का फोन इतनी सुबह सुबह? उसने जल्दी से कॉल पिकअप किया और फोन की दूसरी तरफ से तुरंत अभिमन्यु की आवाज सुनाई दी, गुड मॉर्निंग लव। अभिमन्यु की आवाज सुनकर इप्सिता के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने भी बड़े ही प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग। अभिमन्यु ने कहा, सो रही थी ना आप? जैसे ही उसने ये बात कही, इप्सिता की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, आपको कैसे पता चला? दूसरी तरफ से अभिमन्यु के हंसने की आवाज आई, हम आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अब आप इतनी लेट सोई हैं तो कहाँ इतनी जल्दी आंख खुलने वाली थी। खैर, रेडी हो जाइए, हम आपको पिकअप करने आ रहे हैं, फटाफट रेडी हो जाइए। इप्सिता ने कहा, नहीं नहीं, आप हमें यहाँ लेने नहीं आ सकते। अभिमन्यु ने पूछा, क्यों क्यों नहीं आ सकते हम आपको लेने? इप्सिता ने कहा, क्योंकि यहाँ पर आपका आना ठीक नहीं है।
अभिमन्यु ने ये बात सुनकर कहा, कोई बात नहीं, अगर ठीक नहीं है तो हम ठीक कर लेंगे, और वैसे भी आप उदयवीर और नंदिनी को लेकर ही परेशान हो रही है ना? कोई बात नहीं, जैसे हमने आपको पूरा सच बताया है, हम उन्हें भी सच्चाई बता देंगे, और फिर हमें नहीं लगता कि उदयवीर या नंदिनी में से किसी को भी हमारे आपके पास आने से कोई प्रॉब्लम होगी। इप्सिता ने कहा, नहीं वो बात नहीं है, बस अभी हमें नहीं पता कि वो कैसा रिएक्ट करेंगे, इसीलिए अभी आप यहाँ पर नहीं आ सकते। आपको अगर हमसे मिलना ही है तो आप हमें लोकेशन बताइए, हम खुद वहाँ आ जाएंगे, और वैसे भी हम नहीं चाहते कि आप अभी भाई से बात करें, क्योंकि भाई अभी थोड़ा गुस्से में है। इप्सिता ने जैसे तैसे अभिमन्यु को समझाया, नहीं तो वो उसके अपार्टमेंट आने के लिए एकदम रेडी था। अभिमन्यु उसकी बात समझकर बोला, ओके ठीक है, अगर आप ऐसे ही चाहती हैं तो यही सही, ठीक है, हम आपको 5 मिनट में लोकेशन सेंड करते हैं, आप 1 घंटे में वहाँ पहुँचेंगी, क्योंकि हम 1 घंटे से ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, अगर आपने ज़्यादा लेट किया तो फिर हम आपके घर आ जाएंगे। इप्सिता ने मना करते हुए कहा, नहीं आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही आ जाएंगी वहाँ। अभिमन्यु ने कहा, ओके बाय। इतना बोलकर उसने कॉल कट किया। इप्सिता अभिमन्यु का फ़ोन काटते ही बोली, अभिमन्यु से अगर हम मिलने जाएंगी तो क्या पहनना चाहिए हमें? इप्सिता ये सोच रही थी, वो अभी बेड से उठ भी नहीं पाई थी कि तभी अभिमन्यु ने उसे लोकेशन सेंड कर दी। इप्सिता ने लोकेशन देखते हुए कहा, अभिमन्यु को शायद हमसे मिलने की कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी हो रही है, पता नहीं क्यों ऐसे इतना एक्साइटेड हो रहे हैं, जैसे कि पहली बार मिलेंगे हमसे। इप्सिता इतना बोलकर मुस्कुराई और उसने फ़ोन साइड टेबल पर रखा और जल्दी से फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई।